जो बनना हो सच्चा जीवन साथी, पति अपना एनएसवी।
हमारी दो बेटियां हैं, हम चाहते हैं कि उनका भविष्य सुनहरा हो, इसलिए हमने फैसला लिया है कि आगे बच्चे नहीं होने चाहिए।
मैंने जिम्मेदार पति होने का फर्ज निभाया और एनएसवी को अपनाया। 10 मिनट में बिना चीर फाड़ के सरल सा उपाय और आधे घंटे बाद घर, खुराक और दिहाड़ी की भरपाई के लिए 1100 रुपए तुरंत मिल गए थे। न कोई कमजोरी और पत्नी का पूरा प्यार भी। क्यों जी,
हटो जी,
वही है सच्चा जीवन साथी जो पति अपनाए एनएसवी।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
एक व्यक्ति जिसकी सुनने की क्षमता दोनों कानों से सामान्य से कम यानी 25 डेसिबल से कम हो तो उसे बहरापन है। बहरेपन के मुख्य कारण जन्म से सुनने में दोष, कान में संक्रमण, कान में मैल, कान में चोट लगना, ज्यादा शोर अथवा तेज संगीत सुनना। बहरेपन के मुख्य लक्षण आवाज की तरफ ना मुड़ना, बातचीत के दौरान शब्दों को दोहराने के लिए बोलना, नजदीक से बोलने पर शब्दों को ना समझ पाना, टीवी एवं रेडियो को ऊंची आवाज में सुनना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज 25वें करगिल विजय दिवस पर देशभर में सेना के वीर सपूतों के बलिदान को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज द्रास में करगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी और हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन में शहीद सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की। लद्दाख में शहीद हुए नायक गुरप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार अम्बाला जिले के शेरपुर गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। और पेरिस ओलंपिक खेलों की आधिकारिक शुरुआत रात 11 बजे आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह से होगी। अब समाचार विस्तार से। आज 25वें करगिल विजय दिवस पर देश सेना के वीर सपूतों के बलिदान को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज द्रास में करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख की ये महान भूमि करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ की साक्षी बन रही है। उन्होंने कहा कि करगिल विजय दिवस हमें ये बताता है कि देश के लिए दिया गया बलिदान अमर है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमलों पर पाकिस्तान की आलोचना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान अतीत में भी अपने सभी नापाक प्रयासों में विफल रहा, लेकिन वो आतंकवाद और छद्म युद्ध का सहारा लेकर स्वयं को प्रासंगिक बनाए रखने के प्रयास कर रहा है। श्री मोदी ने देश के रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत अब हथियार निर्यातक देश के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है, जो किसी समय हथियार आयात करने वाले देश की अपनी पिछली छवि के बिल्कुल विपरीत है। प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना के बारे में भ्रामक सूचनाएं फैलाने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये देश में होने वाले महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है और इससे भारत का सामर्थ्य बढ़ेगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन में आयोजित एक समारोह में शहीद सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की तथा देश के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। इस समारोह में उन सैनिकों की वीरता और बलिदान को सम्मानित किया गया जिन्होंने करगिल युद्ध में भाग लिया और देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी। राज्यपाल ने वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वीर स्मृति स्थल की डिजिटल बुक में भी अपना संदेश अंकित किया। समारोह में सेना की पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहित वधवा व अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। हरियाणा में भी आज कई जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाने के समाचार मिले हैं। पलवल में आज बंधन बैंक ने इस उपलक्ष्य में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान विधायक दीपक मंगला ने करगिल युद्ध के शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर प्रशासकीय व पुलिस अधिकारी तथा पूर्व सैनिक भी उपस्थित रहे। उधर अम्बाला छावनी के आर्य कन्या महाविद्यालय में एनसीसी यूनिट वन हरियाणा गर्ल्स बटालियन द्वारा करगिल विजय दिवस मनाया गया। इस दौरान शहीद मेजर शैतान सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अम्बाला में शहीद मेजर योगेश गुप्ता मेमोरियल चौक में करगिल युद्ध के अन्य वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कल शाम भिवानी व जींद सहित कई जगह बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मशाल व तिरंगा यात्रा भी निकाली। केंद्रीय विद्यालय संगठन के चंडीगढ़ संभाग के सौजन्य से चंडीगढ़ में आयोजित 5 दिवसीय प्रवेशन कार्यक्रम आज सम्पन्न हुआ। चंडीगढ़ संभाग की उपायुक्त श्रीमती प्रीति सक्सेना के मार्गदर्शन में हुए इस कार्यक्रम में चंडीगढ़, जम्मू और भुवनेश्वर सहित विभिन्न संभागों के 52 नवनियुक्त डीजीटी शिक्षकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2023, कक्षा प्रबंधन, डिजिटल माध्यम, कृत्रिम मेधा, यूबीआई पोर्टल, रिकॉर्ड के रखरखाव और विद्यालय भवन की देखभाल पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान व्यावसायिक एवं रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। लद्दाख में शहीद हुए नायक गुरप्रीत सिंह का अंतिम संस्कार आज अम्बाला जिले के शेरपुर गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। भारतीय सेना की 146 LTA-8 TSP रेजिमेंट के जवानों ने मातमी धुन के साथ हवा में गोलियां दाग हथियार उल्टे करके शहीद को सलामी दी। प्रशासकीय पुलिस व सेना के अधिकारियों ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र भेंट कर श्रद्धांजलि दी। सेना के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार गुरप्रीत सिंह ने लद्दाख में 4 लद्दाख स्काउट्स यूनिट में ड्यूटी पर तैनात थे। ड्यूटी के दौरान गश्त करते हुए पैर फिसलने से बर्फीले पानी में गिरने से वो शहीद हो गए। पेरिस ओलंपिक आज से शुरू हो रहे हैं। सीन नदी के किनारे रात 11 बजे आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह के साथ खेलों की आधिकारिक शुरुआत होगी। इस वर्ष पेरिस ओलंपिक्स में 1924 के ओलंपिक खेलों की शताब्दी का जश्न मनाया जाएगा। पेरिस में वर्ष 1900 में दूसरे ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। लगभग 100 साल पहले 1924 में भी पेरिस ने खेलों की मेजबानी की थी। पेरिस ओलंपिक खेलों में कुल 115 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन 115 खिलाड़ियों में से 25 खिलाड़ी केवल हरियाणा से हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्रदेश में देश के अन्य खिलाड़ियों को ओलंपिक जाने पर शुभकामनाएं देते हुए खेलों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2% जनसंख्या वाले हरियाणा से 22% खिलाड़ियों का चयन प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करेंगे और विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं नागरिक उड्डयन मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने आज हिसार में 46 लाख रुपए के सौंदर्यकरण से जुड़े 3 कार्यों का उद्घाटन किया। इन कार्यों में तुलसी चौक पर लगभग 20 लाख रुपए की लागत से बना लाल किले का प्रतिरूप व लक्ष्मी चौक के समीप 17 लाख रुपए की लागत से बना चंद्रयानु सेक्टर 9-11 दिल्ली मार्ग से शहर में प्रवेश स्थान पर लगभग 9 लाख रुपए की लागत से बना इंडिया गेट का प्रतिरूप शामिल है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का दिन हिसार विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए खुशी का दिन है, जब हिसार में विभिन्न चौकों पर राष्ट्रीय गौरव के प्रतिरूपों की स्थापना की गई है। डॉ. गुप्ता ने कहा कि सरकार पिछले 10 वर्षों में प्रदेश का एक समान विकास करने पर जोर दे रही है। कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में आज अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया और मार्च पास की सलामी ली। खेल महाकुंभ परसों 28 जुलाई तक चलेगा। इस 3 दिवसीय खेल महाकुंभ में साइकिलिंग, जूडो, हॉकी और वॉलीबॉल खेलों के मुकाबले होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज 25वें करगिल विजय दिवस पर देशभर में सेना के वीर सपूतों के बलिदान को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज द्रास में करगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी और हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
एक व्यक्ति जिसकी सुनने की क्षमता दोनों कानों से सामान्य से कम यानी 25 डेसिबल से कम हो तो उसे बहरापन है। बहरेपन के मुख्य कारण जन्म से सुनने में दोष, कान में संक्रमण, कान में मैल, कान में चोट लगना, ज्यादा शोर अथवा तेज संगीत सुनना। बहरेपन के मुख्य लक्षण आवाज की तरफ ना मुड़ना, बातचीत के दौरान शब्दों को दोहराने के लिए बोलना, नजदीक से बोलने पर शब्दों को ना समझ पाना, टीवी एवं रेडियो को ऊंची आवाज में सुनना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।